بن یہ آیا یہ فرشتوں کی دنیا پہنے پرکاش میں کایا سول وطن سے اوپر اپنا سوکشم وطن یہ آیا یہ فرشتوں کی دنیا پہنے پرکاش میں کایا سب سے اوپر مول وطن گھر سب سے اوپر مول وطن گھر جائے تنک یہاں چہر ہاتھ میں ہاتھ لیے بابا کے چلو کرے ہم سے
اوم شانتی اوم شانتی. تو آج ہم جو کوشچن آنسر کا سیریز چل رہا ہے اس کے انترگت 83 نمبر کوشچن ہے اور جو مرلی ہے 25/12/82 کی مرلی کے دوارا لیا گیا کوشچن ہے. تو کوشچن ہے کہ ایئر کنڈیشن کا ٹکٹ بک کرانے کی طریقہ کیا ہے, کرانے کا طریقہ کیا ہے. تو اس کے اوپر بابا نے تو کئی ساری مرلی میں تھوڑا تھوڑا بتائے ہیں. اس میں ایئر کنڈیشن کا سیٹ پراپت کرنے کے لیے آج سنسار میں دیکھا جاتا ہے لوگ جیون بھر کتنا محنت کر کے اپنے جیون کو سکھی بنانے کے لیے ہر پرکار کے پریشرم کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. جب ویکتی یوگیہ سمپن بن جاتا ہے اس کے بعد ایس آر ایم کا جیون شروع ہوتا ہے. تو اس کے انترگت وہ اپنے جیون کو سکھی بنانے سکھی رکھنا چاہتا ہے, سکھی دیکھنے چاہتا ہے. اسی لیے وہ آتمائیں آج کل تو ایئر کنڈیشن کا چاروں طرف بول بال ہے, کیونکہ وگیان جیسے جیسے انتی کو پراپت کرتی ہے تو ہر پرکار کے نئے آوشکار سنسار کی آتماؤں کو دلاتی ہے. سنسار کی آتمائیں سکھی رہے خوش رہے اس کے لیے وہ استھل روپ سے بھی ایئر کنڈیشن کا جو آوشکار جو ہوئی ہے, جیسے کہ واتاورن انوکول بولتے ہیں, جیسے کہ اپوزٹ دشا میں چلنے والی جو استھتی کو پیدا کرتا ہے, جو تپتی گرمی میں بھی اتنی شیتلتا کا انوبھو کراتا ہے اور ٹھنڈی کے ٹائم میں گرمی کا انوبھو کراتا ہے, تو ایئر کنڈیشن کی یہی وشیشتا ہے. اس لیے آج آتمائیں اتنا سکھی بن گئی ہے کہ چلتے پھرتے سفر سے لے کر کے اپنے گھر تک اس چیز کو اویلیبل کرنا چاہتی ہے. اور جہاں پیسہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ پیسہ پھینکو اور تماشا دیکھو, اس پرکار کی باتیں دنیا میں تو دکھائی دیتی ہے اور سبھی آتمائیں اس کے انوبھوی ہے. اس لیے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ تو تھوڑا سمے کے لیے بابا کہتے ہیں کہ وگیان کے جو بھی سنسادن پیدا ہوئے ہیں آوشکار ہوئے ہیں وہ زیادہ سمے نہیں ہوا ہے اور آگے بھی زیادہ سمے نہیں چلے گا. اسی لیے تمہاری استھتی ابھی سی ایئر کنڈیشن کا ہوگا تو تم اپنی دنیا میں 2500 برس تک سکھ شانتی امن چین دیرگایو اور چرایو کی دنیا میں تم جاؤ گے, ایسی دنیا تمہاری ہوگی. اسی لیے اس پرکار کی سیٹ کو بک کرنے کے لیے بابا ہم سب کو کئی پرکار کی شکشائیں ہم سب کو دیتے رہتے. تو ایئر کنڈیشن کا سیٹ بک کرنے کے لیے وہ اس سیٹ کو بک کر سکتا ہے جو ہر پرستھتی اور سمسیاؤں میں ایک رس رہتا ہے. کیسے بھی بھیشم پرستھتی آ جائے, بھیشن پرستھتی آ جائے, اس کی اوستھا ٹس کا مس نہیں ہوتی ہے, ایک رس رہتا ہے. اور اس اوستھا کو بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. اپنی استھتی کو بگڑنے نہ دینے کے لیے وہ جانت سے لگا رہتا ہے. اس لیے وہ آتما اپنے اوستھا اور اپنی استھتی کے دوارا بابا نے بتائے گئے جتنے بھی کنڈیشنس ہے اس کو کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتی ہے और उस कंडीशन से वो समझौता नहीं करती है, और इस विषम परिस्थिति को भी उसने सम बना के रखा है अथवा वातावरण अनुकूल बना के रखा है, और उसका इफेक्ट उसके मन मस्तिष्क में दिल दिमाग में आने नहीं देता है। तो परमात्मा शक्ति, परमात्मा ऊर्जा इतना अनंत है, उस चीज को जान करके पहचान करके अपने जीवन को महान बनाने का ये समय चल रहा है। तो जिसने इस प्रकार की स्थिति को अजमाए हैं वो आत्मा ही एयर कंडीशन के सीट को बुक कर सकती है। इसलिए आगे वो आत्मा जो सादगी का अवतार है, जैसे कि इकोनॉमी का अवतार है, वही आत्मा ही एयर कंडीशन के टिकट बुक करा सकती है, सीट को बुक करा सकती है, क्योंकि उसने यहीं खाया, यहीं कमाया और यहीं खाया, उधर के लिए कुछ सेविंग नहीं रख सका, बचत नहीं कर सका। तो यहाँ कितने भी बड़ी स्थिति बना ले, उधर के लिए अगर बचत नहीं किया उन आत्माओं ने, तो उधर के लिए भी वो खाली हो जाएगा। स्थिति भले यहाँ पर दिखने में आता है, अनुभव करने में आता है, लेकिन जो हम इतना फजूल खर्च कर लेते हैं समय, शक्ति, एनर्जी को, तो ये चीज़ें वहाँ जा कर के हमें वो चीज़ें नहीं होने देगा जो हम चाहते हैं। इसलिए एक बार दादी प्रकाशमणि जी ने कहा था, जब शुरू शुरू में मोबाइल आना शुरू हो गया था, 2003-4-5 की बात थी, तो उस समय किसी किसी के हाथ में मोबाइल आ गई थी, तो फिर उस समय अब इसका क्या रूप रंग तो होगा कुछ किसी को पता नहीं था, तो धीरे धीरे सोचते थे कि 2-4 लोगों के हाथ में आ गए ये चीज़ें, तो सोचने लगे आगे इसकी और प्रकोप बढ़ेगी। तो दादी ने ओम शांति भवन में क्लास करा के सबको सुनाए थे, बहुत इजीली भाषा में सुनाए थे, मीठी बातें, कि जो यहाँ ज़्यादा खर्च करता है, फजूल खर्च करता है, वहाँ उसका सोते कम हो जाएगा। तो एक दादी तो स्ट्रिक्टली बता रही थी ये होने ही नहीं चाहिए, लेकिन दादी ने इतनी मीठी भाषा में, मीठी शब्दों में सबको इशारा से सुनाया कि ये बातें अगर यहाँ ज़्यादा यूज करेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। तो आज हमारी दादी जानकी जी, जैसे कि सादगी का मूर्त, सादगी के मूर्त बन करके संसार को वो सैंपल बन करके दिखाई है, जैसे कि कम खर्च बालन सिंह जो बाबा कहते हैं, तो दादी जी तो एक एक कण दाना, एक एक अन्न का वो वैल्यू रखती थी। एक बार सुना रही थी दादी, मजाल है कि एक दाना कोई नाले में चला जाए, थाली धो के पी लेना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों के लिए इतना स्ट्रिक्टली दादियों ने इस बातों को फॉलो किए, इसीलिए इतने मुकाम तक वो पहुँच पाए। तो एक बार बता रही थी दादी, अमेरिका गई हुई थी, तो हंसा दीदी के क्लास में सुन रहा था डॉक्टर हंसा रावल, तो उनके वहाँ उस उनके सेंटर में तो दादी हर साल जाती थी, ऐसे कुछ बहुत घनिष्ठ रिश्ता था दीदी के साथ में, और इतने बढ़िया संबंध, और हर साल जाना आना चलता रहता था, और दादी कुछ तबीयत ऊपर नीचे होता था तो भी वहाँ पर जाकर के थोड़ा ट्रीटमेंट लेना वरना ये सब बातें चलती थी। तो फिर दादी वहाँ गई हुई थी, दादी जानकी जी, और दादी जानकी ने देखा कि अंशा दीदी एक बहुत बड़ा टावल यूज कर रही थी, यूज में रखा हुआ था, तो फिर देखा कि इतना छोटा शरीर और इतना लंबा चौड़ा टावल, दादी ने बीच में फाड़ दिया उसको, कभी इसको यूज करना, कभी इसको यूज करना, इतने बहुत चीज़ एक ही बार में यूज करोगे। तो दादी ने इस प्रकार से हम सभी आत्माओं को कितनी अच्छी सादगी सिखाई है। और भी कोई भाइयों के बारे में हम सुन रहे थे सादगी की, जो मूर्त और कम खर्चा वाले की, जो पुराने जो आत्माएं हुए हैं, आज हम देखते हैं थोड़ा सा कुछ अच्छी सुविधा मिल रही है, तो ऐसी सुविधा इन सबको नहीं मिला है। उन्होंने इतनी कुर्बानी दी है यज्ञ के लिए, हड्डी हड्डी गलाए हैं, और कई सारे डिपार्टमेंट को उन्होंने एक साथ चलाए है। हाँ, तो इसका एक भाई सुना रहे थे कि वो बता रहे थे कि जब ये पूरे कपड़ा पुराना हो जाता है तो इसका एक साइड का निकाल करके टॉवल के रूप से यूज करते थे, इतने बड़े बड़े जो सीनियर पोस्ट पोजीशन के सरकारी ड्यूटी करने वाली जो आत्माएं बाबा के घर में आई थी, तो उन्होंने बाबा के घर में आकर के कैसे आठ आना चार आना एक एक रुपया की बचत की। एक भाई तो सुना रहे थे कि टूथपेस्ट खत्म हो जाता था तो लेने जाते थे तो दादी क्या कहते थे कि उसको लेके आओ, तो उसको बेलना चौका में रगड़ के जितना एक दो दिन के लिए निकलता है उसको यूज करो। तो इस तरीके से कम खर्च जो बालानसीन आत्मा होती है ना, वही आत्माएं ही एयर कंडीशन की टिकट के मालिक बनती है, एयर कंडीशन की सीट प्राप्त करती है। और जो आत्मा जैसे कि सर्व आकर्षणों से मुक्त है, संसार में जितने भी प्रकार के जो आकर्षण है वो आत्मा को कमजोर करती है। अगर हम अपनी सीट पर सेट नहीं है, सो स्थिति के सीट पर सेट नहीं है, अपनी पोजीशन में नहीं है, वो चीज हम सबको आकर्षित करती रहती है। इसीलिए दो तीन दिन पहले भी जो स्लोगन में आया था, सर्व आकर्षणों से मुक्त होने की बात है, तो सर्व आकर्षणों से जो आत्मा मुक्त है, चाहे संसार में आंखों से देखने वाली चीजें हैं, कान से सुनने वाली चीजें हैं, और मुख से जो बोलते हैं, हर प्रकार की आकर्षण होती है आत्माओं को, वो चीज सबको अच्छा लगता है, चाहे देखने वाली चीजें हैं, जैसे कि हम नेट में लगे रहे, टीवी में ही लगे रहे, वो भी एक प्रकार के आकर्षण है, क्योंकि थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए 5-10 मिनट ऐसे जानना समझना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसी में टू मच फंसे रहना, इसको भी आकर्षण कहा जाता है। तो आकर्षण एक प्रकार के नहीं होते, कई प्रकार के आकर्षण है। तो उससे अगर कोई आत्मा मुक्त होती है, मुक्त रहती है, वही आत्मा ही एयर कंडीशन की सीट बुक करा सकती है, उस सीट को प्राप्त कर सकती है वो आत्मा, वरना ऐसे उस सीट प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए आगे तो जो बाबा ने बताया है कि जो तीन प्रकार की जो लोक पसंद, प्रभु पसंद और दिल पसंद जो सर्टिफिकेट जिसके पास में होगा, सभी आत्माएं माने और सभी आत्माएं स्वीकार करें, तभी जाकर के एयर कंडीशन का सीट बुक कर सकेंगे। नहीं तो आधा लोग बगावत कर रहे हैं, आधा लोग तो बोलते हैं कि धारणा में तो 2% नहीं है, इसको ऐसे सो हिसाब से अपनी मर्जी से उस सीट पर सेट करना कोई नहीं चाहता है। और कल हमारे जैसे जीवन जी रहा था, अभी इसको हम राजा कैसे मानेंगे, इसको कैसे मालिक मानेंगे हम? इसीलिए कोई आत्मा स्वीकार नहीं करती है। इसीलिए लोक पसंद का जो सर्टिफिकेट है, जो जो प्रभु पसंद होगा और दिल पसंद, बाप पसंद, इस सब प्रकार के सर्टिफिकेट चाहिए। और उसमें दूसरा बाबा ने बताया कि जो चार प्रकार के जो संतुष्टता है, स्वयं से संतुष्ट, बाप से संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट और ड्रामा अथवा अपने पार्ट से संतुष्ट, ये चार प्रकार की संतुष्टि उसके जीवन में होगी, वो आत्मा ही निर्संकल्प बन सकती है। नहीं तो यहाँ तो क्या क्यों और कैसे के तो बहुत बड़ा महफिल है, और इस महफिल में एक एक आत्माओं की बायोग्राफी सबको पता है, तो ड्रामा का जो नॉलेज हमारे पास में फूल अगर नहीं होगा, तो फूल नॉलेज नहीं होगा तो उसको खींचता रहेगा, पुल करती रहेगी उसको, और वो आत्माओं को बीच में फालतू संकल्प करने का चांस सोते मिल जाता है। इसीलिए इस चारों प्रकार का सर्टिफिकेट हमारे पास में होगा, वो ये आत्मा है एयर कंडीशन के सीट में बैठ सकती है और उसका अनुभव कर सकती है। सीट तो मिल गया है, लेकिन उस सीट का भी तो अनुभव करने के लिए हमारे पास में इतनी सामर्थ्य तो चाहिए। इसीलिए कई बार देखा गया है कि तो चाहे राजधानी का ट्रेन का टिकट बुक करते हैं, वहाँ तो पूरे एसी होता है, एयर कंडीशन होती है, लेकिन लोग वहाँ भी शांति से बैठ नहीं पाते, इधर से उधर, उधर से उधर चलते रहते उसका एंजॉय नहीं कर पाते। सीट तो खरीद लिया है, पैसा है हमारे पास में, हमने लगानी कर लिया, अपनी चीज को सुविधा के लिए कर लिया, लेकिन हम वहां भी शांति से नहीं बैठ पाते। इसलिए उस सीट का अनुभव करने के लिए भी कितना हमको अटेंशन देना पड़ेगा। उस सीट का एंजॉय कौन कर सकता है? जो योगी होगी, जो तपस्वी आत्मा होगा, जो जिसका मन एकाग्र हो गया होगा, वो आत्मा ही उस सीट का अनुभव कर सकती है, आनंद ले सकती है। नहीं तो सीट तो खरीद लिया हमने, भुगत कर ली, लेकिन हम इधर से उधर चक्कर काट रहे हैं, इसीलिए इसमें भी हमें देखना होगा कि सीट का एंजॉय भी तभी कर सकेंगे जब अभी से हमने स्वराज्य अधिकारी बनकर के अपने सीट पर सेट हुए होंगे। दिखता है वैरायटी है सबको, सब देखने में आजकल क्या नहीं दिखाई देता तो इसीलिए उस सीट के लिए भी हमें स्वराज्य अधिकारी बनकर के रहना होगा। जो स्वराज्य अधिकारी होंगे, जो सर्व कर्मेंद्रियों का मालिक बना होगा और लंबा समय तक बैठने का अभ्यास, उसका गहराई में जाने का अभ्यास जिसने किया होगा, वही उस सीट का अनुभव कर सकता है। सीट में बैठने से सब कुछ नहीं होता है, और सीट में बैठ करके उसमें भी आध्यात्मिक उन्नति हो, प्रगति हो। बाबा के बच्चों को तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें लोग कम होते हैं, योग करने के लिए उस सीट अच्छा रहता है। और जिसके पास में होता है उस करना भी चाहिए, और जिसके पास में नहीं होगा वो तो कहीं भी बैठ के करने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि यात्रा में तो कई आत्माओं के तो हफ्ता में कई बार सफर होते रहते हैं, तो इसीलिए उस सीट का फायदा तभी हम ले सकेंगे। इसके बाद में आगे कि बाबा के जो तीन पास बोलाए बाबा ने, पास होने वाले, पास रहने वाले, पास करने वाले, तीन प्रकार के पास चाहिए तभी हमको सत्ययुग का पास मिलेगा। तीन प्रकार का पास अर्थात, एक तो पास भी दानव बनने वाला, और बाबा के पास सदा रहने वाला, और जो भी बातें आती है उसको गेट आउट करने वाला, बाईपास, अंदर घुसने नहीं देना है उसको। क्योंकि आजकल देखा जाता है बड़े बड़े हाईवे बनाए होते हैं, वो शहर के बीच से नहीं होते, उसे काट के बाहर से निकाले होते, भीड़ भड़ाका में उसको लाते नहीं है, और उसमें अगर आ जाए तो हजारों लोग आगे और आने और जाने का चलता रहता है, ट्रैफिक जाम होती है, इसीलिए उसको रोड से भी उस लेवल से ऊपर लिए होते, क्योंकि लोग नीचे से अपना काम करते रहे तो अपनी गाड़ी का जो स्पीड कभी कम न हो, इधर उधर डिस्टर्ब न हो करके वो बाईपास लेते हैं, कहीं भी देखा जाता है। तो इस रीति से जिसने इस बातों को, जैसे कि बाईपास करने की, चलो आगे निकल जाओ, उसके उसको हटाने की ताकत, उसको हटाने की सामर्थ्य उसके पास में होगा, तो एक तो बाबा के पास सदा ही रहता होगा, और कितना बड़ा लक्ष्य और उद्देश्य रखा है, मुझे ये सीट प्राप्त करनी है, पास विद अनर का सीट प्राप्त करनी है, फर्स्ट डिवीजन में जाना है। इसीलिए इसके लिए बाबा ने 69 की मुरली में बोला था कि बाबा ये आत्माएं तो 108 के लगभग सेलेक्टेड हो चुके हैं, इतने वर्षों से साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, अब हमको फर्स्ट डिवीजन में आने का लक्ष्य रखने की क्या जरूरत है। तो बाबा ने क्या बोला कि फर्स्ट का रखोगे तो सेकेंड थर्ड हो सकोगे, और फर्स्ट का लक्ष्य रखे ही नहीं तो सेकंड थर्ड होने की भी बातें नहीं, कहाँ खिसक जाओगे पता ही नहीं चलेगा। तो उस ठिए को पकड़ के रखोगे ना तो फिर उस चीज को करना, हमको लक्ष्य सदा याद रहेगा, उद्देश्य सदा याद रहेगा, तो आगे बढ़ने में हमको सहज होगा। और जो आत्मा सेकंड में न्यारा और प्यारा होने की अभ्यास करती है, हमारा पूरा पढ़ाई का आधार ही यही है, पढ़ाई का पूरा मदार ही इसके ऊपर टिका हुआ है। संसार की आत्माएं तो घर बार छोड़ करके बेघर होते हैं, गांव छोड़ देते हैं, शहर छोड़ देते हैं, अपने पूरे एरिया ही छोड़ देते हैं, तब जाकर के सन्यासी बनते हैं। लेकिन बाबा ने हमको इस प्रकार की सन्यास सिखाए हैं, एक सेकेंड में अपने घर से भी बेघर हो जाओ, ये घर भी उसका है, मैं इस कुटिया में बैठा हूं, सेकेंड में जाने और आने का अभ्यास, एक सेकेंड में इधर है तो एक सेकेंड में उधर है, इस प्रकार का अभ्यास जिसके पास में होगा वही आत्मा एयर कंडीशन का सीट बुक कर सकती है, इस एयर कंडीशन के टिकट का एंजॉय कर सकती है, उस सीट में बैठ करके भरपूर आनंद ले सकती है। और उसके बाद में जो आत्मा सिंपल है और सैंपल है, क्योंकि आज हम सब बाप दादा का रेफरेंस देते हैं, मम्मा का रेफरेंस देते हैं, और हम भी तो कोई 40 साल से, कोई 50 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से ज्ञान में चल पड़े, चल रहे हैं, तो उसको बाप दादा को इमर्स करना ना पड़े, उस आत्मा को देखते ही लग जाए कि हमारे बाप दादा ऐसे थे, मम्मा ऐसी थी, है ना, बाबा ऐसे थे। इसीलिए कहते हैं कि जो विश्व रतन दादा को देखते थे तो बाबा की याद आती थी। 100% डिटो कॉपी किए थे, जो फॉलो फादर कहते हैं ना, तो टोटल बाबा ने, दादा ने करके दिखाए थे। और विश्व किशोर बाबू के लिए भी कहते हैं, तो हमारे जगदीश भाई को देखने से भी सब लोग अनुभव करते थे, अंदाजा लगाते थे कि बाबा ऐसे थे। तो हम सब सिंपल भी बने, सैंपल बने, आदर्श बने, उदाहरण मूर्त बन सके, और कोई बीच में टीका टिप्पणी करने वाला न हो, ताने वाने बुने वाला न हो, कि कोई चीजें हमारे अंदर में खोट होगी, कोई भी बातों की कमी कमजोरी होगी तो लोग पहले से ही उंगली खड़े कर देंगे, ये चीज तो बातें तो ऊंची ऊंची करता है लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं है। तो इसलिए हम आदर्श मूर्त बने, उदाहरण मूर्त बने, वही आत्मा ही एयर कंडीशन के सीट बुक करा सकती है। उसके बाद में जिसके पास में कथन और करनी समान है, जो कहता है वो करता है, जिसके पास में कहते हैं संकल्प बोल और कर्म तीनों साथ साथ हो और उसमें कोई अंतर ना आ जाए, इसके लिए तो कम संकल्प करने पड़ेंगे, बोल भी कम करने पड़ेंगे, क्योंकि जिसके ज्यादा संकल्प चलते हैं और बोल इतना ज्यादा हम बोलते रहते हैं तो व्यवहार में लाना इतना आसान नहीं होता है, तो उसकी पटरी पर हमें चलना पड़ेगा। तीनों चीज हमारे पास समान होने पड़ेंगे, तो तीनों चीज हमारे पास में समान होगा, वही आत्माएं ही एयर कंडीशन के सीट में बैठ सकेगी, उस सीट को बुक करके उसका फायदा उसको होगा। तो जिसके पास में सरलता का गुण है, ट्रांसपेरेंट लाइफ है, अंदर भी जैसा है बाहर ऐसा ही है, बाहर जैसा है अंदर ऐसा है, तो वो आत्मा के लिए कहते हैं कि यो तो इनोसेंट परसेंट है, खुली किताब है उसका जीवन, प्रैक्टिकल लाइफ है। लोग गर्व करते हैं उसका नाम लेने से, सैंपल बन करके किसी को कहीं क्लास में सुनाते हैं तो भी उसको अच्छा लगता है, और उसमें अपने बड़ों का नाम लेने में तो खुशी सोते होती है, और जो प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं उसको तो सोते ही, हम सबको भी उनको देख करके खुशी होती है और हमको भी हिम्मत आता है, ताकत आता है कि हम भी इतने महान आत्माओं के समीप रहने का सौभाग्य मिला हम सबको। इस प्रकार से हम भी उसको गर्व, उसको देख करके, उनको देख करके हम भी गर्व कर सकते हैं। और जिसके पास में एडजस्टिंग पावर है, एडजस्ट करने की क्षमता है, जिसको कहते हैं कि समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति जिसके पास में प्रचुर मात्रा में होगा, वही एडजस्ट कर सकती है हर परिस्थिति, हर बातों को, छोटी छोटी बातों को हटाना, उस बातों से मुक्त करना, और उसकी बातें सब मानेंगे। जिसका हृदय विशाल है, जिसका दिल विशाल है, वही आत्मा ही इस चीज के अधिकारी बनती है, इस सीट के अधिकारी बनती है। और छोटी छोटी बातों में मूड अप होना, लड़ना झगड़ना, तेरी मेरी बातों में जो आता है, उसको ये सीट मिलने के बाद में भी वो चक्कर काटने वाला ही हो जाएगा। आगे क्या हो रहा है थोड़ा देख के आते, पीछे भी थोड़ा क्या हो रहा होगा, पापड़ चना चटपटे झालमुरी कहाँ बिक्री हो रहा है उधर तिर चल पड़ेंगे उसका एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो फिर जब रेस्ट का टाइम आता है तभी करवटे बदलते रहेंगे। तो इसीलिए इस चीज के ऊपर भी हमें जितना देखना है कि हमारी ये जो स्ट्रेचिंग पावर कितनी है, पहले तो हमने अपने मन के अंदर जो लड़ाई चल रही है ना उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर में तो पहले से उथल पुथल मचा हुआ है और बाहर से थोड़ी सी कोई बातें अगर आती है तो वो ऐसे रिजेक्ट कर देता है तो पहले तो अंदर में शांत करना पड़ेगा अपनी लड़ाई को, अपने जो अंदर में द्वंद चल रहा है और जंग चल रहा है, वो द्वंद और जंग को हम खत्म करेंगे, प्रतिक्रिया को जब हम खत्म करेंगे तभी हम एयर कंडीशन के सीट पर सेट हो सकेंगे। वरना अंदर की लड़ाई हम खत्म कर ही नहीं पा रहे, इसीलिए कहा जाता है हजारों लड़ाई जीतने से अच्छा स्वयं को जीतो। स्वयं की अंदर की लड़ाई को जीतने वाला ही संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी माना गया है, और जो मर्यादाओं से बेपरवाह होता है उस सीट के अधिकारी नहीं बनता है। बाबा ने एक लाइन में यह भी बोला है कि जो मैं कोशिश करूंगा कोशिश करने वाले एयर कंडीशन के सीट के अधिकारी नहीं बन सकता है। तो मर्यादाओं पर हम कितना चलते हैं। मर्यादाएं स्थूल रूप में तो हल्का रूप से हमने देखा है, अमृत वेले से लेकर के रात तक जैसे हम चलते हैं, हम सबको तो मर्यादाओं की पटरी मिली हुई है। हमारे यहाँ पर उस प्रकार की रूटीन बना हुआ है और उसके अंदर में भी सबसे ज्यादा चेक करने की बातें हैं, मन कितना अपसेट रहता है, मन कितना मर्यादाओं पर चलता है। पहले तो तन को चलाना पड़ेगा, तन को चलाने में भी पहले मन चिल्लाना शुरू करेगा फिर तन चलना शुरू हो जाएगा तो मन की बारी आ जाएगी। तो मन की बारी आ जाएगी, मन जब ठीक होता जाएगा तो अंदर में जो चित्त है, जो अवचेतन मन है, वहां तक हमारा पहुंच बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे उस संस्कार हमारा पक्का होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा। इसलिए इसके ऊपर भी हम जैसे कि कितना कर पाते हैं। और जो आत्मा निश्चय बुद्धि है और निश्चिंत रहता है और यह सीट मेरा श्योर एंड सर्टेन है ही है, इस सीट के लिए मैंने फोकस किया है, लक्ष्य उद्देश्य बनाया है, और वही आत्मा ही निश्चिंत होकर के चलती है। और जिसको पाने की कोई उम्मीद ही नहीं है, आशा ही नहीं है, वो निश्चिंत नहीं हो सकते। इसलिए जो बाबा ने बोला चार प्रकार के निश्चय इसमें भी आते हैं। तो चार प्रकार के निश्चय जिसके पास में पक्का होगा वही आत्मा ही एयर कंडीशन के सीट पर सेट हो सकती है। और जिसके पास में सर्व खजानों की अनुभव की अथॉरिटी होगी, सर्व खजाने जो बाबा ने बताए हैं, कई प्रकार के खजाने, जिसमें ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, गुण के खजाने, पवित्रता के जो खजाने हैं, श्वास संकल्पों के जो खजाने हैं, इस सब खजानों का अभी ही हमने प्रैक्टिकल में अगर अनुभव किए होंगे, अभी ही इसकी गहराई में हम गए होंगे कि दुनिया का रूल क्या है और ब्रह्मांड का नियम क्या है, इस चीज के गहराई में जाकर के जितनी अच्छी वाइब्रेशन हमारे अंदर से फैलेगा, जितना लंबा समय फैलेगा, उस सब ये वाइब्रेशन ब्रह्मांड में जाकर रिजर्व होगी। और सतयुग में जो प्राकृतिक दासी होगी ना, उसका कारण यही है कि हमने इस चीज को रिजर्व करके रखा है। और तभी तो जी हाजिर जी हजूर करेगी, प्रकृति दासी कैसे बनती है। और तत्व को हमने कितना पावन बनाए है, मिलने वाली सारी चीजें तो प्रकृति से ही हमको, अभी तो बाबा से मिल रही है, बाबा से जो मिल रहा है हम उसको अनुभव कर रहे हैं, और यह अनुभव को हम प्रकृति सहित धरती में ट्रांसफर कर रहे हैं, इस शक्ति को ब्रह्मांड में ट्रांसफर कर रहे हैं उसको, और वो चीज फिर बाद में रिटर्न होकर के हमारे पास ही आएगा। तो इसलिए इसकी गहराई में जाना साइंटिफिक रीजन है। और ये जितने हम खुशी में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, निश्चय नशे में रहते हैं, ये चीजें हमारे अंदर से निकलने वाला वाइब्रेशन सर हदों से पार पहुंच जाती है। तो इसीलिए आज हम सब सोचते हैं कि छोटी सी सेवा कर रहे होते हैं छोटी सी सेवा है, लेकिन हम क्या कहते हैं, हम विश्व कल्याणकारी है। सेवा तो हमें बाबा ने बोला कि बिजी रखने का साधन है, लेकिन तुम्हारे अंदर से जो वाइब्रेशन निकलेगी इस सर हदों से पार जाएगी, अखिल ब्रह्मांड में फैलेगा। इसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है इसमें, ये इस देश का बॉर्डर है, इस देश का बॉर्डर है, इस प्रकार के बॉर्डर ही नहीं इसमें, ये तो सीधा वार पार कर देगा, इस क्षितिज से निकल के उस देशांतर तक पहुंच जाएगी। इसलिए आज हम सब जानते हैं कभी कभी हवाओं के झोंके कितना होती है, तूफान आता है इस सृष्टि में, हवा तो अनादिकल से जितना है उतना ही है, लेकिन वो घूम करके आती रहती है कितने दिन में चक्कर काटती रहती हो। इसीलिए इसके ऊपर में भी हमारा सारा सिस्टम भी इसके ऊपर ही लागू होता है, इसी तरीके से लागू होता है। इसीलिए दुनिया के नज़र में तो हम पानी वेस्ट कर रहे होते हैं, स्थूल रूप से देखा जाए तो वेस्ट करने से बचना भी है, बचाना भी है, लेकिन जो पानी के ऊपर जो साइंस काम करते हैं, एक बूंद पानी भी कभी नुकसान नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं से वहीं पहुंच जाती है वो जहां से आया था। इसीलिए हमें भी ये देखना है कि हम दुनिया को क्या दे रहे हैं और दुनिया को क्या दे सकते हैं। पूरे कंप्लेंट की फैक्ट्री खोल करके तो नहीं बैठे, शिकायत के डिब्बा बन करके, डब्बा बन करके, इसके ऊपर भी हम जितना अनुभव की अथॉरिटी हमारे पास में जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, सर्व खजानों के हम अनुभवी बनेंगे, तो ये खजाना हमारे सारे हद के सोच दृष्टिकोण ऐसी भावनाओं को स्वतः ही खत्म कर देगा। तो अब हम आगे देखेंगे कि हम बेहद के बैरागी कितना बने हैं। बेहद के बैरागी अर्थात क्या? बेहद के बैरागी अर्थात दुनिया में तो ऐसे महान धुरंधर साधु संत महात्माएं हुए हैं, वो उधर के हो गए, उस दुनिया को जो पता ही नहीं उनको, उस दुनिया के बन गए, और उनके नजदीक जाने से, उनके समीप जाने से हमें भी स्वतः वैराग्य की स्मृति आने लग जाती है। तो क्या आज हम इतना वैराग्य है हमारे पास? और ये वैराग्य दादी दीदी के लिए कहते हैं, जब उन्होंने ये रट्टा लगाना शुरू कर दिए थे अब घर जाना है, तो ये बेहद के वैराग्य का जो कहते हैं पराकाष्ठा था, अब वो उधर की हो चुकी है। इसलिए महान आत्माओं के लिए दिखाते हैं, वो सर्वोच्च स्टेज पर पहुंचने के बाद में भी लोक कल्याण के लिए, लोक हितों के लिए थोड़ा सा नीचे आकर के संसार की आत्माओं की सेवा की उन्होंने। तो इसलिए हम लोग ने भी कई बार सुने हैं, दादी जाने की कितने बार बोली होगी, बाबा मेरे सारे सखियों को ले गए अपने, उसको उठा लिए, उसको ले गए, हमको अभी तक क्यों रखा है? तो कैसी स्थिति बनाई होगी जिसको कभी भी जाने की हिम्मत, कभी भी बुलाव आ सके, एक सेकेंड में आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं है, इस स्थिति को बना के रखे थे। इसलिए बेहद के वैराग्य की अनुभूति तब होना शुरू हो गई थी कि दादी यहाँ की नहीं है, वहाँ की बन चुकी है। तो वर्मा बाबा के लिए तो कहते हैं कि कोई कुछ बोलता था, बाबा इतना खोए हुए डूबे हुए होते थे ऊपर के परम धाम की स्थिति में, ऊंची स्टेज में, बाबा को इधर आने के लिए मेहनत करना पड़ता था, इधर आने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता था, लेकिन आज हम सबको उधर जाने के लिए इतना है ना, बीस नाखून का जोड़ लगाने के बाद भी नहीं हो पा रहा है, उधर के नहीं हो पा रहे हम, क्योंकि आज भी हमारे अंदर कई प्रकार के राग है, आकर्षण, कई प्रकार के आकर्षणों ने हम सबको गांच के रखा हुआ है। कोई जीभ के आकर्षण, कोई आंखों के आकर्षण, कान के आकर्षण, कई प्रकार की तमन्नाएं हमने ऐसी पाल के रखी है, तो वो हमको छोड़ने नहीं चाहते और हम भी उसको नहीं छोड़ने चाहते क्योंकि हमने भी उसको पकड़ के रखा है। तो इसीलिए जब वो पकड़ता है तो हम भी नहीं पकड़ते, हमने भी पकड़ा हुआ है, एक अगर छोड़ दे तो एक आपस में आए ना, छोड़ने का सिलसिला जारी हो जाता है। इसीलिए किसने किसको पकड़ा है इस तरीके से जो एक बार सुनाया था, मग्गे में मक्खन डाला हुआ था ठंडे दिन में तो किसने किसको पकड़ा, एक जो वकील पढ़ के आया था उसको तर्क करना था, तो ठंडी दिन में मक्खन तो अंदर जाके चिपक गई, वो कितना भी करने से नहीं निकल रहा था, तो उसने स्टडी चालू कर दिया किसने किसको पकड़ा है तो थोड़ी देर में एक थोड़ा जानकार आदमी था, किसने किसको पकड़ा थोड़ा देखा था, तो सिकड़े के ऊपर एक मिनट डाल दिया था, अब इधर करो इधर, तो मक्खन नीचे आ गए एक सेकेंड में। तो अब हम सब को भी एक आपस में किसने किसको पकड़ा है, लेकिन छुड़ाने के लिए क्या चाहिए, योग की अग्नि चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, तभी हम इस चीज से छूट सकेंगे, इस चीज से दूर हो सकेंगे। टेम्परेचर बहुत कम है, 1500 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, लेकिन हम कितना पैदा कर रहे हैं, 400-500 डिग्री टेम्परेचर पैदा कर रहे हैं, तो कितना फासला बाकी है। तो इसलिए वो चीजें हमको छोड़ना चाह करके भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। इतना कोरोना ने तो हम सबका कल्याण कर दिया है, क्योंकि उसने तो सारी आत्माओं को योगी बना दिया है, तपस्वी बना दिया है। पहले कहते हैं चैरिटी बिगन्स एट होम, घर में तो कोई वाइब्रेशन दे ही नहीं रहा था। सुबह उठे सेंटर में, शाम को भी सेंटर में, घर में तो सोने के डेरा बना के रखी थी, अभी घर को पहला पावन बनाओ, पवित्र बनाओ, घर के लोगों को वाइब्रेशन दो करके कोरोना ने सभी आत्माओं को इतने अच्छी तरीके से कोरा लगा दिया कि कोई चांस ही नहीं रहे कि अब मैं जाकर के क्या करूं। पहले सेंटर में बुलाने से लोग नहीं आते थे, अभी सेंटर में आकर के 5 मिनट बैठने दो करके दीदी के आगे नमन कर रहे नहीं 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 बोल के, अब वो आकर के अंदर बैठा है, वो जाने के बाद में वो सीट सब सैनिटाइज करना पड़ रहा है, सब धुलाई करनी पड़ रही है, पैसा दान पुण्य करके इस बाबा को घर में सेवा करके जा रहे हैं, पैसा को स्नान कराना पड़ रहा है अभी तो ऐसी हालत हो गई है। वो सेंटर में देखा पैसे टेबल पर लंबी लाइन में लगे हुए हैं, एक दो दिन तो पता ही नहीं चला क्या बात है बोल के, तीसरे दिन के बाद पता चल गया कि पैसे में भी कोरोना आ सकता है बोल के उसको स्नान पानी करा के अच्छी तरह सुखा के रखा हुआ था। तो इसीलिए बाबा ने हम सबको एयर कंडीशन का सीट प्राप्त करने के लिए एक सुवर्ण अवसर दिया हुआ है। हर ब्राह्मण दिल से शुक्रिया हम सब देते हैं समय को, जो अभी का ये जो मौका है आगे जाकर के कभी नहीं मिलने वाला है। तो फिर आगे जो है कि एक बल और एक भरोसा, जिसके पास में एक बल और एक भरोसा है ना, भगवान को सब कुछ अर्पित कर दिया वो सब कुछ करेगा। इसीलिए जो हृदय पुष्पा दादी बेंगलोर की है ना, हाँ, तो दादी को बाबा सेवा में भेज रहे थे, तो दादी क्या कह रही थी, दादी मुझे बाबा मुझे वहाँ की भाषा तो आती नहीं है, वहाँ तो सभी अब कन्नड़ा बोलते हैं, ऐसी जगह पर मुझे भेज रहे, मुझे नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है। तो बाबा ने क्या बोला, बच्ची तुम जा और सब काम तो मैं करूँगा, मैं तुम्हारा सेवादारी बनकर के सेवा करूँगा, जब तुम बोलोगी तो मैं सब कुछ करके दे दूंगा, बाबा ने बोला। तो वहां जाने के बाद में सब काम बाबा ने ही किया, वहां पर किसको टच कराना है, किसको क्या लाना है, किसको क्या पहुंचाना है, एक एक चीज की उसकी जो अनुभव सुनते हैं ना रिंगटे खड़े हो जाते हैं। दादी के लिए बाबा ने, जैसे कि मैं सब कुछ करने वाला हूं, तो एक एक चीज बाबा ने किए। दादी बाबा जैसे कि मम्मा लेने के लिए गई थी दादी को, दादी ने क्या बोला कि बाबा ने मुझे यहाँ भेजा है, मैं वापस नहीं जाऊंगा जब तक मैं एक ग्रुप तैयार करके बाबा के आगे वो पुष्प को नहीं लेके आऊंगा, फूल बना के नहीं लेके आऊंगा, तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो बाबा ने एक एक अनुभव कराए और इतनी बड़ी सेवाएं आज हुई है साउथ में, इतनी बड़ी सेवा होना उसी समय, तब से लेकर के कई ऐसे अनंत रत्न अनन्य रत्न बाबा के बने हैं। इसका मतलब बाबा सब कुछ करता है। तो एक बार एक घटना दिखाते हैं कि विवेकानंद कहीं से सफर करके आ रहे थे ट्रेन में बैठ करके, तो ट्रेन में बैठे हुए थे, एक नजदीक में एक आदमी भी बैठा हुआ था, होते तो बहुत सारे होते हैं, उसके आवभाव को देख करके उसको अजीब व गरीब लग रहा था। तो फिर सन्यासी जैसा लगा उसके ड्रेस देख करके, तो उसने डांटना शुरू कर दिया उसको, हाँ लगते हो हट्टा कट्टा लगते हो, सन्यासी होकर के कोई काम करते नहीं, जी चुराने वाले लोगों, इस प्रकार की गालियां दे रहा था, हाँ काम चोर लोगों, इस प्रकार से गालियां दे रहा था। लेकिन उसने सभी माफ कर दिया सुने अनसुने करके। ट्रेन की सफर आगे बढ़ती जा रही थी, तो उनको भूख लगा हुआ था, एक दो दिन कितना दिन हुआ था खाए हुए नहीं थे, तो एक जगह पूछ करके ट्रेन रुक गई, ट्रेन से उतर गए, विवेकानंद भी उतरे, वो आदमी भी उतरा, तो नदी थोड़ा सा आगे दूर बैठ करके वो पोटली से कुछ निकाल के खाना शुरू कर दिया। और वो क्या कहता है, तुमने भी कुछ किया होता तो हमारे जैसे तुम भी खा लेता, ऐसा बोलता है उनको। तो थोड़ी देर में वो आसन जमा के बैठे हुए थे, एक आदमी कुछ छोटी सी थैला में कुछ लेके आया और आकर के क्या बोला कि आप ही हो विवेकानंद? तो उसने बोला हाँ मैं हूँ विवेकानंद। तो आज रात को सपन में भगवान ने मुझे क्या बोला कि मेरा अनन्य भक्त विवेकानंद आ रहा है ट्रेन में सफर करके, वो भूखा है, उसके लिए कुछ बना के लेके जाओ। तो उसके आपके लिए मैंने सुबह बना करके रेडी करके तैयार करके आपके लिए लाया हूँ। तो विवेकानंद बाहर निकल के क्या बोला था उस आदमी को, हम तो भगवान के भरोसे वाले लोग हैं, वो खिलाता है तो खाते हैं, नहीं खिलाते तो नहीं खाते। तो वो पोटली से निकल के खा रहा था, वो बैठे हुए थे, जब उसको ये व्यक्ति सुना रहा था कि भगवान ने रात को स्वप्न में आकर के मुझे बोला, तो व्यक्ति का तो होश ही उड़ गया, उसने भोजन छोड़ करके उसके चरण में आके गिरने लगा और उसने कहा कि मैं नास्तिक टाइप का आदमी हूँ, भगवान के ऊपर इतना विश्वास नहीं है मुझे, लेकिन आज आपको देख करके मुझे इतना विश्वास हुआ है कि भगवान है इस संसार में। तो दुनिया के लोग भी इस प्रकार से भगवान के प्रति जो आस्था विश्वास रखते हैं तो उनका सब काम हो जाता है। तो हमारा बाबा तो सर्वशक्तिमान है, और एक बल और एक भरोसा जब हो जाता है तो बाबा सब कुछ करता है। कई बार हमने अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी देखे हैं, तो इतने सारे बातों का अनुभव हम लोग ने भी, हर आत्माओं ने किया हुआ है कि बाबा क्या नहीं करता है। तो इस प्रकार से हमें आगे भी एयर कंडीशन की जो टिकट को जो बुक करना है उसके लिए क्या है कि जो आत्मा जिसके पास में जमा का खाता ज्यादा है, जो भरपूर है, दुआओं का खाता, आशीर्वाद का खाता, शुभ भावना शुभ कामना के खाते जिसके भरपूर होंगे, वही आत्मा ही एयर कंडीशन की टिकट बुक कर सकती है, एयर कंडीशन के सीट में बैठ सकती है। जो आत्मा कंबाइंड स्वरूप है, बाबा के सिवाय कुछ नहीं है, वो बाबा के साथ कंबाइंड होकर के रह रही है, वो आत्मा का स्वतः ही कल्याण होना है। और वो आत्मा ही आगे जाकर के जय जयकार होगा, सभी आत्माओं के बीच में होगा जिन्होंने इस प्रकार से अलग हट करके तपस्या किया है, साधना की है, उस स्थिति को बनाए होंगे। वो आत्मा आगे जाकर के सबके लिए आंखों के सितारा बन जाएगी, तारे बन जाएगी, सबके नजर में निगाह में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उन आत्माओं ने सब प्रकार के बैलेंस रखे हैं। तो हर प्रकार के जो आत्मा बैलेंस रखती है वही ब्लेसिंग के अधिकारी बनती है। हाँ, क्योंकि बाबा ने बताया कि जो आत्मा पवित्र आत्मा है और उसके मन वचन कर्म में पवित्रता रग रग में भरा है, इम्प्यूरिटी क्या चीज है, अविद्या है, इनोसेंट है, वो आत्मा अभी से ही उसके वाइब्रेशन से तत्व सहित ग्रह नक्षत्र पावन बनेंगे। और पवित्रता जितनी गहराई में होगी उस आत्माओं की तो स्वतः ही हर प्रकार से कल्याण हुई पड़ी है, और वही आत्माओं ने ही संसार में तहलका मचाए है। और पवित्रता वो चीज है जो आत्मा की सभी आत्माओं को प्रिय लगती है, संसार में सुनने में अच्छा नहीं मानते हैं लोग, लेकिन उसके वाइब्रेशन सबको अच्छा लगता है। वो सब आत्माएं अनुभव करती है कि ये अनुभव ये अंडरफुल अनुभव है, जो उसके अंदर में भी सॉफ्टवेयर तो है ना, भले वो कर नहीं पा रहा है, भोग विलास में व्यस्त है, बिजी है, संसारिक इंसान बनकर के चल रहा है, लेकिन उसके अंदर में भी सॉफ्टवेयर तो है। जो अनादि सद्गुण है वो तो सबके पास है, लेकिन कोई सब आत्माएं अभी प्रैक्टिकल में अनुभव करके अपने जीवन को महान बनाती है, कोई कर पाती है, कोई नहीं कर पाती है। तो उसके लिए यहाँ पर बाबा हम सबको इस प्रकार के जो एयर कंडीशन के टिकट को बुक करने के लिए जो विधि बताई है, तरीके बताए हैं, और जो कोशिश करने वालों को नहीं होगा बोला बाबा ने। और सर्व प्रकार के जो कंडीशंस होते हैं, हद के कंडीशन, यो होगा तो मैं सेवा करूंगा, ऐसी स्थिति होगी तो मैं करूंगा, सहयोगी हैंड्स होंगे तो सेवा करेंगे, इस प्रकार के जिसके पास में हद की कंडीशन रखते हैं, शर्त रखते हैं, वो एयर कंडीशन के सीट के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए हमें बाबा ने इस प्रकार के हर दिन, आज भी बाबा ने मुरली में क्या बोला, विचार सागर मंथन करके खजाना अपने आप तैयार करना चाहिए, बुद्धि का भोजन अपने आप से तैयार करना चाहिए, अपना भोजन खुद ही बनानी चाहिए। इसीलिए हमने भी थोड़ा बहुत चिंतन करके तो इसीलिए अपना बनाया हुआ सबको अच्छा लगता है, नमक कम हो चाहे ज्यादा हो किसको बोल पाते नहीं। इसीलिए हम सब आप सबके बीच में जो अनुभव जो चिंतन करके आप सबके समक्ष रखा, तो इतने में ओम शांति।